ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सप्तमस्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 22। इस अध्याय का नाम है सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उद्देश्य। असंकल्प जायते कामम् क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थानर्थे च आलोभम् भयं तत्त्वावमर्शनात्। असंकल्पात संकल्प से जयेत जीते कामम कामेच्छाओं को क्रोधम क्रोध को काम वर्जनात इंद्रिय इच्छा के विषय को त्याग देने से अर्थ धन संग्रह अनर्थ दुख का कारण इच्छा मानने से लोभम लोभ को भयम भय को तत्व सत्य अवमर्शनात विचार करने से। अनुवाद तापर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद महाराज की जय। संकल्प पूर्वक योजनाएं बनाकर मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति की कामपूर्ण इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। इस प्रकार ईर्ष्या त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। धन संग्रह करने के दोषों पर विचार विमर्श करके लोभ का प्रत्याग करना चाहिए और सत्य की विवेचना करके भय का त्याग करना चाहिए। मेरे पीछे दोहराइए, संकल्प पूर्वक योजनाएं बनाकर मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति की कामपूर्ण इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। इस प्रकार ईर्ष्या त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। धन संग्रह करने के दोषों पर विचार विमर्श करके लोभ का प्रत्याग करना चाहिए और सत्य की विवेचना करके भय को त्याग करना चाहिए। तात्पर्य, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सुझाया है कि किस तरह इंद्रिय तृप्ति के लिए विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कोई भी मनुष्य स्त्रियों के विषय में सोचना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस तरह सोचना स्वाभाविक है। सड़क पर चलते हुए भी उसे अनेक स्त्रियां दिखेंगी, किंतु यदि कोई स्त्री के साथ न रहने का संकल्प कर ले तो वह स्त्री को देख कर भी कामुक नहीं होगा। यदि कोई मैथुन न करने का निश्चय कर ले तो वह विषय वासनाओं पर स्वतः विजय पा लेगा। इस प्रसंग में उदाहरण दिया जाता है कि यदि कोई भूखा भी हो किंतु यदि वह किसी दिन उपवास करने का संकल्प कर ले तो भूख प्यास की बाधाओं पर स्वाभाविक विजय प्राप्त कर सकेगा। यदि कोई संकल्प कर ले तो किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा तो सहज ही क्रोध पर विजय प्राप्त करेगा। इसी प्रकार वह धन संचय करने की इच्छा को त्याग सकता है। मात्र यदि वह इतना ही सोच ले कि अपने पास आय धन की रक्षा करना कितना कठिन है। यदि किसी के पास प्रचुर नकद धन रहता है तो वह उसे ठीक से संभालने के विषय में चिंतित रहता है। इस तरह यदि कोई धन संचय के अवगुणों की विवेचना करे तो स्वभावतः बिना कठिनाई के अपना व्यवसाय छोड़ सकता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण कहा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदा पनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु देवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। तो ये जो प्रसंग इस समय चल रहा है ये हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक है, विशेषकर जो गृहस्थ जीवन में है या ब्रह्मचर्य जीवन में है, किसी भी जीवन में अगर वो मनुष्य है तो ये मनुष्य के लिए एक बहुत ही सुंदर संदेश है कि जो मनुष्य है वही ब्रह्मचारी बनता है, वही गृहस्थ बनता है, वही वानप्रस्थ लेता है, वही संन्यास लेता है। एक कुत्ते बिल्ली नहीं करते ऐसा, सच है नहीं सच, ये हमारे लिए है। वास्तव में भगवान गीता का जो संदेश है, भागवतों का जो संदेश है, सब पूरे मानव समाज के लिए, ये जानवर समाज के लिए नहीं, ये मानव समाज के लिए। यदि हम मनुष्य हैं तो भगवत गीता और भागवत का संदेश किसके लिए है? हमारे लिए। हमें इसका पालन करना चाहिए। तो नारद जी युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं, ध्यान सुने, कि संकल्प पूर्वक योजनाएं बनाकर मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति की काम पूर्ण इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। कितने सुंदर ढंग से समझा रहे हैं नारद जी कि हमको अगर कोई चीज त्यागना है तो उसका फॉर्मूला बता रहे हैं कैसे त्यागना चाहिए। इस प्रकार ईर्ष्या त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यदि आप एंगर पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो ईर्ष्या को क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। ये समझा रहे हैं, धन संग्रह करने के दोषों पर विचार विमर्श करके लोभ का प्रत्याग करना चाहिए। यदि आप लोभ से दूर रहना चाहते हैं तो उन्होंने विधि बताई है, और सत्य की विवेचना करके भय का त्याग करना चाहिए। अब देखिए इसी बात को श्री प्रभुपाद जी ने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सुझाया हुआ संदेश बताया कि इंद्रिय तृप्ति के लिए विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कोई मनुष्य इस तरह के विषय में सोचना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस तरह सोचना स्वाभाविक है। सड़क पर चलते हुए भी उसे अनेक स्त्रियां दिखेंगी। यदि कोई स्त्री के साथ न रहने का संकल्प कर ले तो वह स्त्री को देख कर भी कामुक नहीं होगा। ये सच है, क्योंकि भागवतम के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, कि हर जीव की उत्पत्ति प्रेम की पराकाष्ठा से होती है, ध्यान रखना चाहिए। और स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, जो एक स्वाभाविक है। यही कारण है कि यदि कोई पुरुष एक सुंदर तस्वीर लड़की की देखता है होर्डिंग पे बोर्ड पे तो भी ध्यान से देखता है। इसीलिए जितनी भी एड कंपनियां हैं हर जगह, यहाँ तक कि गाड़ी अगर लॉन्च करते हैं, कोई गाड़ी लॉन्च होती है तो वहां भी लड़की मॉडल रखते हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष का स्वभाव होता है लड़की देख। इसीलिए एड कंपनी, इसलिए नेचुरल, जहां कोई मतलब नहीं है, है ना, एक गाड़ी लॉन्च हो रही है वहां पर स्त्री को खड़ी करने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, क्योंकि लोगों की जो दृष्टि है उधर है। तो प्रभुपाद जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया करते थे कि इंसान इतना कामुक है, लोलुप है, कि एक पुरुष, एक व्यक्ति 80 साल की अवस्था में अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, लेटा हुआ है आईसीयू, ऐसे उस पर लगा हुआ है। अगर डॉक्टर के साथ जवान नर्स आती है तो उसकी नजर लेटा हुआ है, मरने जा रहा है, उसकी नजर पड़े किस पे जाएगी? डॉक्टर देखेगा, लड़की का देखेगा, नर्स हो जाएगी। इस स्वाभाविक एक आकर्षण, आप खुद जब तस्वीर को लोग इतने ध्यान से देखते हैं तो जो बिचे बेचारे जा रही लड़की थे उसको कैसे घूर के देखेंगे, है ना? आज ही होगा पूरा समाज क्या स्त्रियों को लड़कों को निकलना घर से बाहर क्या हो गया है, मुश्किल हो गया। क्यों? यही काम, क्योंकि लोगों पर अपने इंद्रियों पर कोई कंट्रोल है ही नहीं, और शिक्षा भी नहीं दी जाती। समस्या शिक्षा की, एजुकेशन की। ये समस्या तो एक प्रभुपाद यहां बता रहे हैं श्री विश्व सिर्फ समस्या करके कि स्वाभाविक ऐसा, लेकिन यदि कोई मैथुन न करने का निश्चय कर ले तो वह उसे वासनाओं पर स्वतः विजय प्राप्त कर लेगा। वास्तव में भागवतम में जो संदेश बताया गया है कि हमें स्त्री से संबंध तभी बनाना चाहिए जब हमें संतान की इच्छा हो, ये भागवतम का संदेश है, अन्यथा नहीं। कोई मानता है? कोई भागवतम से पढ़ता ही नहीं, सुनता ही नहीं, तो कैसे स्वीकार करें? हमें इंद्रिय तृप्ति, अर्थात हम शादी करते हैं तो इंद्रिय तृप्ति को भोगने के लिए नहीं जान, लेकिन यहां उल्टा वक्त समझाते हैं। शास्त्र कहता है कि यदि आप संतान चाहते हैं तभी आप संबंध बनाइए। उसके कई प्रकार के साथ नियम बताए गए कि किस समय संबंध बनाना चाहिए, कितने माले का जप करना चाहिए, पूरा सांस्कृतिक सिस्टम है, वैदिक सिस्टम है, लेकिन न तो कोई उसको सुनता है न कोई जानता है, सुनना नहीं चाहता। सब कुत्ते बिल्ली की तरह जानकर लगे हुए, इसीलिए परेशानी। परेशानी का मूल कारण यह है कि अपने जो काम की जो इच्छा है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा इसलिए है कि हम शास्त्र नहीं पढ़ते, जानते हैं जो चीज हमारे शास्त्र में हजारों हजारों साल पहले बताई गई। अभी कल ही एक न्यूज आई इसी टॉपिक पर लेकर के कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके पाया कि स्त्रियों से संबंध बनाने का जो समय है वो सुबह का समय है। अभी न्यूज आ गई, न्यूज फ्लैश हो गई, अखबार में आप पढ़ सकते हैं। अब देखो यही बात जब हम व्यासाश्रम बैठकर भगवद गीता भागवत सब यही बात बताते हैं तो लोग मानते नहीं। इसे बताया गया कि यदि आप एक अच्छा संतान चाहते हैं, चाहे पुत्र या पुत्री है, अच्छा संतान हम चाहते हैं तो जो सात्विक समय है, सात्विक समय मतलब कि शतगुण समय, वो क्या होता है? ब्रह्म मतलब चार वर्ष लेकर के सूर्योदय के पहले तक का जो समय है उस संबंध बनाने का, अच्छा संतान प्राप्त करने का सबसे उत्तम बालक है, ये हमारा शास्त्र कहता है, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे। लेकिन कोई वैज्ञानिक कैसे बताते उन्नीस में जाते जस्ट तो लोगों को पता ही नहीं। इसीलिए भागवतम पढ़ना जरूरी है। आप गृहस्थाश्रम में जाते हैं तो गृहस्थाश्रम का मतलब होता है कि कृष्ण आपके केंद्र में है तब गृहस्थाश्रम है, नहीं तो क्या है गृह में। ज्यादातर 99% लोग क्या बनते हैं? गृह में ही बनते हैं। गृहस्थ तो वो बनता है जो वैदिक सिस्टम का पालन करते हुए अपने घर की दिनचर्या स्टार्ट। इसीलिए लोग क्या है परेशान, उनको पता ही नहीं कुछ। इसीलिए हमारा जो वैदिक ज्ञान है ना इस सिस्टम उसको जानना चाहिए। तो यदि आप जो है काम भावना पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इन सब चीजों पर कंट्रोल करना चाहिए। तो एक जो किताब है ना उपदेशन रूप गोस्वामी जी का, उनका जो सबसे बढ़िया श्लोक भक्ति के लिए जिसको हम बार बार हमने यहां भी शायद बोला होगा कि जो छह इंद्रियां हैं वाचो वेगम मनुष्य जीवा वेगम दर्पस्थ, अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं और भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, जब तक इस श्लोक को अपने जीवन में प्रैक्टिकल नहीं अपनाएंगे, आप कितना भी छवि पूरी चैंटिंग करें कुछ फल नहीं। जानते क्यों? क्योंकि ये इंद्रियां ही हैं जो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी क्या करती हैं, बाधा डालती। इसे कहते जीवा का भेद जो है इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवा उदर और उपस्थ यानी कि इंद्रियां, ये तीनों एक लाइन में होती है। अगर आपका कंट्रोल इस पर नहीं है तो नीचे कंट्रोल नहीं रहेगा, समझिए साइंटिफिक। इसलिए भक्तों को बताया जाता है कि सात्विक आहार करना चाहिए। कभी कभी आप सब लोग पूछते हैं कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, पूछते नहीं पूछते? हम लोग कहते हैं नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, उड़द की दाल से बचना चाहिए, मशरूम नहीं खाना चाहिए। क्यों? कि यही चीजें हैं जो हमारी कामुक इंद्रियों को क्या करती हैं, उकसाती हैं। इसका मेन रीजन है। तो साफ एक करता है कि जो भक्ति मार्ग में है उनको इन तमोगुणी को बढ़ाने वाली चीजों से क्या करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। राइट? इफ यू वॉन्ट टू कंट्रोल योर सेंसेस जेंटर, तो इनसे हमें क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। और जो बाहर का आदमी है वो तो चूंकि यही करना चाहता है इसे दबा के खाता है। इस समझे इसके पीछे तो मसूर की दाल, उड़द की दाल है नहीं, जान लीजिए प्याज लहसुन मशरूम, ये हमारी काम भावनाओं को बढ़ाते हैं, तामसिक आहार है। इसलिए इन तामसिक आहार को हम भगवान को भोग लगाते हैं और न हम इसको क्या करते हैं, खाते हैं। इसका ये भी शरीर अब यही चीज शास्त्र बताया गया है, उसको साइंस बता देगा समान ऐसा है। इसीलिए मेन रीजन यही है, क्योंकि हम इन तामसिक ये सब तमोगुण ये तामसिक आहार के अंतर्गत आते हैं कि हमारी तामसिक प्रवृत्तियों को ये चीजें क्या होती है, उकसाती हैं, बढ़ाती हैं। इसीलिए जो भक्ति मार्ग में जो सात्विक विचार के लोग हैं वो इन तामसिक आहारों से क्या करते हैं, बसते हैं। तो आहार भी सात्विक होता है, राजसिक होता है और तामसिक होता है। समय भी सात्विक होता है, राजसिक होता है और तामसिक होता है। तो जो ब्रह्म होता है 3:30 से लेकर के 6 बजे तक, सूर्योदय तक का जो समय होता है वो सात्विक समय है। इसमें भक्ति के लिए सबसे उत्तम समय है। इस आप खुद अनुभव होंगे कि जो सुबह जितनी अच्छी से ढंग से जप होता है दिन में होता ही नहीं। राइट? आप कहीं अगर आपने जप के लिए सुबह का समय निकाल दिया तो आपका जप कभी पूरा नहीं हो सकता, कि समय क्या होता है, रास्तिक हो जाता है। रास्तिक समय आदमी खाता पीता और क्या करता है, कामों में लग जाता है, एक काम करने के समय। तो दोपहर का समय क्या करते, काम करने, इतनी सीमा होती है आप दौड़ते रहते हैं। राइट? और जब तमसिक समय होता है सूर्यास्त के बाद, तमोगुण जितनी भी गलत विचार जा रहे हैं, डकैती डालना है, लूटना है, जुआ खेलना है, शराब पीना है ना, इस समय क्या होता है, तामसिक। यही कारण है कि जब जैसे जैसे रात घर आती है जितने तामसिक लोग हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, शराबी कबाबी हैं, ये होटलों के क्लबों के तोड़ते हुए चले जाते हैं। इसीलिए उनको निशाचक कहा गया है। निशाचक लोग तो होता है रात ही अच्छा मच चलने वाले, जो तामसिक व्यक्ति होता है वो रात में ही चलता है। यही कारण कि लोग ज्यादा निशाचक और टिके रात को निकलेंगे 2-3 बजे तक होटल में रुकेंगे, और जब जब सात्विक से उठने का समय आता है तो सोने जाते हैं, और 12-1 बजे क्या करते हैं, उठते हैं। ऐसा टाइम टेबल है। अब ऐसे लोगों को आप क्या कर सकते हैं? यही लोग कहेंगे कि हम इतने परेशान हैं, परेशानी हमने पाली। क्यों? क्योंकि हमने शिक्षा ग्रहण नहीं की। सच्चे कि नहीं सच्चे? यही सच है, क्योंकि हम इसी दुनिया से हैं, हम भी इसी दुनिया से हैं। आने के बाद जब प्रभुपाद संस्था जुड़ा तब ये चीजें सीखने को मिली, नहीं तो हम भी वही करते थे जो दुनिया करती थी। सच्चे कि नहीं?
मैं भी इसी दिल्ली में था, सोता था सवार से खुद चाय काम पीते थे, कि भक्ति का कोई मतलब ही नहीं था, यही तो सब करते थे। आर्टिस्ट से रेडियो में प्रोग्राम दिया करता था, मैं रेडियो आर्टिस्ट था दिल्ली में, कहानियां करता लिखा था, झील सी गहरी आंखें, हम कवि है ना तो हम लिखते थे करता है, तो झील सी गहरी आंखें, हम जानते हैं कि किसी के आगे झील जैसी नहीं होती, लेकिन कवि लिखना पड़ेगा, सब बढ़ा चढ़ा कर लिखना होता है, जब कवि होती है ना ऐसे होता है। एक कंकड़ आंसू से एक कंकड़ तिनका उड़ के आंख पर जाए तो रोना ना आंसू निकल जाते, हम कहें झील से गहरी आंखें तो मैं जब झील में तो मछली भी चली गई, तो कवि की कल्पना ऐसी होती है, क्योंकि कवि है तो कल्पना हर शब्द जितने भी गीत संगीत होते हैं ये सब कल्पनातीत होते हैं, कल्पना चीज होती है, लिखा जाती है इमेजिनेशन, राइट, ऐसा होता है। तो इस सारी दुनिया में देखें, देखिए जब पंप पॉजिशन में आए तब सच्चाई समय के वास्तव में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हम उसी में क्या गए ढल गए, अब हम उन्हीं शिक्षा देते हैं, राइट। तो यही है कि यदि आपका सही ज्ञान मिल गया, इस सही ज्ञान का क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए कि हम सुधरेंगे और दूसरों को सुधारेंगे। आपका लोग कभी सुनेंगे जब आपका आचरण स्वयं क्या होगा, शुद्ध हो, तो आचरण के द्वारा हमें प्रचार करना चाहिए, जैसा कि प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी सफल रहे क्योंकि प्रचार किया खुद व्यवहार से आचरण से, इसलिए हमको बहुत सतर्क होना चाहिए इन सब में से। तो एक चीजें हमको, चूंकि हमें भक्ति करना है, हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, हमें अपनी काम वासनाओं पर भी क्या करना चाहिए, नियंत्रण करने की कला आनी चाहिए। ऐसा तभी होगा कि जब हमारा माइंड किस पर सेट होगा, कृष्ण के चरणों में, तो भगवान से ज्यादा कोई चतुर नहीं है, परम चतुर सार कहता है, भगवान से ज्यादा चतुर कोई नहीं है। कैसे, बस सिंपल सवाल, प्रभुपाद बोला करते द माइंड हु इज इंटेलिजेंट ही डिड नथिंग, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो कुछ करता नहीं, क्यों, वो करवाने मास्टर होता है। हमारे कृष्ण ऐसे ही हैं, और राधा रानी को बगल बैठा करके बांसुरी बजाएंगे, राइट, 33 करोड़ देवी देवता बना करके सबको पोषपाव दे दिया है, वो करते रहे, इसे इसे ही कर दे, सारा सिस्टम अपने सब सिस्टम कर रहे हैं। रिमोट किसके हाथ में है, कृष्ण के हाथ में, रिमोट किसके हाथ में है, कृष्ण के हाथ में, ये होता जल का देवता अग्नि देवता सब देवता बना करके सबको अपना अपना पुरस्कार दे दिया है, ये अपना जरे मरे करें और भगवान क्या करें, बांसुरी बजाएं, ऐसे ही अब भगवान इतने चालाक है, खुद बांसुरी बजा रहे हैं मुस्कुराते हुए, राधा रानी क्या कर दे, आशीर्वाद आपको, आप देखिए कहीं भी आप देखेंगे कृष्ण इंजॉय है, परम बचता है ना, कहीं भी आप कृष्ण को आपको देखे राधा को कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसकी बांसुरी बजाएंगे और आशीर्वाद किसी दिलवाएंगे, क्यों, क्योंकि इस संसार को कौन चलाता है, राधा रानी चला रहे लक्ष्मी के रूप में, लक्ष्मी से ही इस संसार चल रहा है, इसीलिए सबको क्या चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं लक्ष्मी तभी आएंगी टिकेंगी जब उनकी आप क्या करोगे, पूजा करोगे, समझिए आशीर्वाद राधा रानी देती है, सीता रानी देंगी, लक्ष्मी देंगे, अगर आप लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो बेचारे वो तो संघ चक्रता पुरा चार हाथ भी है, चारों हाथ इंगेज किए गए, आशीर्वाद कौन देगा, लक्ष्मी जी ही देगी, इस सच्चाई इस संसार कौन चला रही है? राधा रानी चला रही है। हम लोग ऐसे नहीं कहते राधे राधे राधे, सब जानते हैं कि राधा रानी को प्रसन्न कर लिया तो कृष्ण अपने आप क्या है? प्रसन्न है। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मीन्स श्रीमती राधा, राधा रानी प्रार्थना वाली है, ये महत्व है। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि हम यहाँ तात्पर्य में कि हमें अपनी काम वासनाओं को जो है संकल्प होना चाहिए। आज तो मैं संकल्प भक्ति का, भक्तों का सबसे बड़ा आभूषण संकल्प। आप ठान लीजिए कि आज से हम ये चीज नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। हमारा संकल्प ही कमजोर होता है, राइट। जब ध्रुव महाराज संकल्प ले लिया कि हमको जंगल में जा करके और भगवान को पाना ही पाना, तो इनका संकल्प कितना मजबूत है इसका पता लगाने के कौन आए? नारद जी आए। और नारद जी कहते तुम बालक हो, ये उम्र थोड़ी है भगवान को प्राप्त करने के लिए, जंगल में जाने के लिए। ये तो चुन्नु मुन्नु हो, खेलने कूदने का समय है। नारद जी पता खुला चाहते, लेकिन जैसे देखा कि बालक तो है छोटा सा लेकिन बड़ा दृढ़ संकल्पी है, तब उन्होंने रास्ता दिखाया कि किस तरह से जाकर किस मन का जाप करेंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे। संकल्प, हमें संकल्प लेना चाहिए। जैसे नामाचार्य श्रीदास ठाकुर है ना, उन्होंने क्या संकल्प किया? जब तक हम 3 लाख जप नहीं करेंगे किसी से बात नहीं करेंगे। और उनको गिराने के लिए बहुत ही खूबसूरत बेश्या भेजा गया। कि जो बेश्या होती है होती वो स्त्री है लेकिन वो कलाकार होती है। सब स्त्री में सब प्रकार का गुण नहीं होता, तो वो जो बेश्या होती है बड़ी आर्टिस्टिक होती है, बड़े अदाब के साथ अंदाज के साथ एक्टिंग करती है आकर्षित करने के। जैसे आप हीरो हीरोइन नहीं देखते, हीरो है हीरोइन है। अब हीरोइन एक हीरोइन में और एक साधारण स्त्री के पार्ट में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही पार्ट होता है ना, लेकिन अदा और स्टाइल अलग होती है और कुछ नहीं होता, वही अंतर होता है। उसी से वो पैसा कमाती है और दूसरी स्त्री हम कुछ नहीं कमाती है ना, क्योंकि बॉडी सबकी एक ही होती है। हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, दिस इज द आर्ट। यही थिंग एक यू सिखाई जाती है ना, कि कैसे देखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। एक्टिंग का डिप्लोमा का कोर्स होता है, यही सिखा जाता है, क्योंकि हमने हमने खुद एक्टिंग का कोर्स किया हुआ तो पता है। नेशनल स्कूल NSPC में जुड़ा हुआ था, जब मैं रेडियो वाले था NSPC में जुड़ा हुआ था। हमारे जितने साथी हैं बैच करके सब इसमें स्टार बने थे, तभी तुम्हारे फ्रेंड हैं सब। यही करता कि कुछ नहीं, किस तरह से बस बॉडी सब कुछ वही होता है, बस स्टाइल चेंज कर देते हैं। हाउ टू स्पीक, हाउ टू ड्रेस अप, यही चीजों को सिखाया जाता है। कहते हैं लोहा वही होता है लेकिन उसको गर्म करके तराशा जाता है, हर हीरा हीरा होता है लेकिन उसको तराश करके उसकी ज्वेलरी बनाते हैं। तो ये जितने कंपनियां खुली हैं NSPC या जितने भी डिप्लोमा, इनका यही काम है कि डायलॉग डिलीवरी कैसे करनी चाहिए। जैसे अभी हमने बोला ऐसे सिखाया जाता है हाउ टू स्पीक। जैसे हम स्टेज पे होते हैं तो हम मैं वही हूँ, मुँह वही है, लेकिन जैसे स्टेज पे आएंगे आवाज बदल जाएगी, आवाज बदल जाएगी है ना। यही बोलने का, क्योंकि सिखाया जाता है कि कौन सा शब्द कहाँ से कैसे जोड़ देके बोला है ना। कहते ना तस्वीर लाएगी, सिखाया जाता है। प्रवचन की में अलग बोलेंगे लेकिन सबका अलग अलग होता है, ये सिखाया जाता है। तो दुनिया इन सब चीजों में क्या है? फंसी हुई है। हमें इनसे बचना चाहिए, इसीलिए शास्त्र कहता है कि हरदास ठाकुर के को गिराने के लिए उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि नहीं। उन्होंने उस बेसा से क्या बोला? कि जब हमारा जग पूरा नहीं हो जाता है, हम तुम्हें समय कैसे दे सकते हैं?
ऐसे
अकारे उनका जग पूरा हो, अकारे उसको समय मिले। क्या हुआ, असर क्या हुआ? तो जब करते रहे और उस सब को क्या करें, बैठ करके सुनते रहे और हरिनाम सुन सुन करके वो क्या बन गई, भक्त बन गई। ये है हरिनाम की शक्ति, एसोसिएशन। अगर आप कहते हैं ना लंगोर का पक्का होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। अगर आप साधु हैं तो लंगोर का क्या होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। नहीं यार, जब मैं दिल्ली आ रहा था, अब एजुकेशन कंप्लीट करके मैं दिल्ली आ रहा था नौकरी के लिए, क्योंकि हमारे मामा जी यहाँ बहुत हाई पोस्ट पे थे विधि मंत्रालय में। तो उन्होंने कहा कि तुम दिल्ली चलो, तुम्हारी नौकरी लगा देंगे। और आते ही 3 मिनट के अंदर मेरी सर्विस लग गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, थी क्लर्क। लेकिन कॉलेज लाइफ में कहानियां लिखना, स्पीच लिखना, ये सब कलाकारी शुरू से करता था कॉलेज लाइफ से, है नहीं? तो मैं सर्विस के साथ साथ ये लिखना पढ़ना शुरू किया। तो कादम्बरी, शेरता, मुक्ता, जितनी लीडिंग न्यूज पेपर है सबके मैंने कहानियां से सब लिखना शुरू कर दिया और निजी से भी कनेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये सारी चीजों के साथ हम जुड़े जरूर, लेकिन इसका सबब कैसे है? एक प्रभु जी हमको मिले, उन्होंने एक किताब दी कृष्ण की ओर। कौन सी किताब? कृष्ण की ओर। पहली किताब मुझे यही मिली थी कृष्ण की ओर। वो किताब पढ़ा तो उन्होंने अपना एक विजिटिंग कार्ड पकड़ा है, तो हमारा जो मंदिर था राधा पाशाद जी का, वो जी के वन में था। तो संडे के दिन मैं वहां पर गया और इस कार के भक्त खाते थे कि जिसको पीछे पड़ गए तो पड़ गए, वो कार खराब हो जाएगा, तो छोड़ ही रहे। हमारे दादी से गए, खूब बढ़िया महाप्रसाद खिलाया, है ना। और उसको प्रभुपाद जी का लेक्चर चल रहा था वीडियो, उसे प्रभुपाद जी की वीडियो लेक्चर चल रहा था। प्रभुपाद जी बोलते, ये वीडियो था ऑस्ट्रेलिया में, प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे। हम पहली बार प्रभावित हुए कि विदेशी लोग नाच रहे थे, फॉरनर, इतने फॉरनर सब डांस कर रहे थे। बड़ा साफ सुथरा मंदिर, के ऐसा मंदिर मैंने देखा नहीं था पहले, तो खूब जोर से डांस कर रहे थे विदेशी लोग। अब प्रभुपाद जी के लेक्चर चल रहा था वीडियो पे, उसे प्रभुपाद जी ने एक लाइन मुझे बहुत प्रभावित की। प्रभुपाद जी ने बोला है कि नौकरी तो करनी ही है संसार में, अगर नौकरी बनना है तो भगवान के नौकर बनो, जो सबका मालिक है। जैसे ही बात बोले हमारे दिमाग की बात बढ़ गई, है ना, कि जो हमारा बॉस है ऑफिस का वो भी हनुमान जी को मंदिर जाता है मंगलवार, हमारे लिए वो मालिक है, लेकिन इसका भी कोई मालिक है जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। यही बात हमारे दिमाग में बैठी, है ना। और फिर हम मंदिर, फिर हमको गीता दी गई, फिर पौना शुरू कर दिया और आना जाना शुरू कर दिया। हमारे पिताजी थे, जो हम बताना चाहते, हमारे पिताजी जब हम घर से आ रहे थे गांव से, तो उन्होंने बोला था कि बेटा दो चीज ध्यान, एक अनिश्चित ईमानदारी और लंगोर का पक्का होना चाहिए, व्यक्ति पर मजबूत होना चाहिए। अगर तुम ये दो चीज को अपनाओगे तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। ये बात जब मैं दिल्ली शहर आ रहा था तो पिताजी ने बताया था। और वही पिताजी जब हम दिल्ली में शक्ल हो गए अपनी अच्छी तरह से, तो वो आए एक दिन हमारे पास रहे। जैसे मैंने बताया छठ इस काम से जुड़े हुए हैं आना जाना सुन गए, तो वही देखे कि हमारे पिताजी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, शासन ऑफिसर थे। उन्होंने कहा कि तुम कहाँ विदेशी संस्था का जुड़ गए, उनके दिमाग में था इस काम एक विदेशी संस्था है, सीआईए के जैसे, ये सब तुम्हें जो है बहका देंगे। ऐसा भी बोला, हमने उनसे बोला था कि पिताजी मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, अगर ऐसी बात होगी तो उनके खिलाफ लिखेंगे, हमारा नाम हो जाएगा। बड़ा अच्छा रिसर्च किया, घुसेंगे तुम्हारे भी लिखेंगे, है लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि प्रभुपाद बड़ा क्रिस्टल क्लियर सोसाइटी प्रभुपाद जी ने, क्योंकि हमारा आधार क्या है, भगवद गीता और भारतम, हमारा अपना कोई अधिकार नहीं। प्रभुपाद जी ने कहीं नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, और आजकल तो जिसको देखो वो कोई देवी बन जाता है, हाँ मैं कृष्ण ले लिया देवी को दुर्गा बन गई, अब पुरुष उनके पीछे पड़ गई, देवी जी, अब देवी जी खुद चक्र में फंस गए। ऐसे कृष्ण कन्हैया बन गए थे। मुकुट पहनने से अब बांसुरी बजाने से कोई महान नहीं बनता, जान लीजिए। तो आज एक बापू जी हैं, वो भी जेल में चल रहे हैं, वो बाप बेटे दोनों मिलकर कृष्ण कन्हैया राज बजाने लगे थे। सोचना, एक गलत है, एक शोर गलत। भगवान भगवान होते हैं, ध्यान रखिए, भगवान भगवान होते हैं, देवी देवी होती हैं, देवता देवता होते हैं, भूत भूत होते हैं, पितर पितर होते हैं, मनुष्य मनुष्य होता है, जानवर जानवर होता है, सब अंदर होता है। ये नहीं सब भगवान है, ऐसा नहीं है, गलत। इसी गीता भगवान ने ही बोला कि देवता की पूजा करने वाले देव लोग को जाएंगे, भूतों की पूजा करने वाले भूत लोग को जाएंगे, पितरों की पूजा करने पितर लोग को जाएंगे। हाँ, जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे धाम आएगा। और ऐसा धाम जहाँ सूर्य और चंद्रमा की भी जरूरत नहीं है, ऐसा धाम जो मेरे प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होता है। आज तो इतने फर्जी गुरु हैं नकली भगवान, वो कहते नहीं भगवान, खा भगवान दो गंगा पूरी जब मारती है तो असल में बता नहीं सकती। सोचने वाली बात, तो हमें इन सब चीजों से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। कोई प्रभुपाद करें किस तरह से हमें इस शंकर होना चाहिए। यदि कोई संकल्प कर ले तो किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा तो सहज क्रोध पर क्या करेगा, विजय प्राप्त। हाउ टू कंट्रोल द एंगर, शायद इस पर हमने यहाँ पर प्रवचन भी दिया था कि कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि रूप गोस्वामी बताते हैं कि क्रोध में क्रोध के वेग को भी कंट्रोल करने की कला आनी चाहिए। प्रभुपाद यहां तो बताया कि क्रोध को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन कन्वर्ट किया जा सकता। ये भी कला है। तो अगर ईर्ष्या, जो आज में जो फॉर्म होता है कि अगर हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे तो क्रोध क्या है अपने आप कम होता चला जाएगा, क्योंकि क्रोध काम से और ईर्ष्या से उत्पन्न होती है। कामात क्रोध दिया जाता, जब काम भावना बढ़ती है और पूरा नहीं होती है तो हमें क्या होता है, क्रोध आता है। ईर्ष्या, अगर किसी के प्रति हम नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो निश्चित रूप से अगर उसके प्रति क्या हो जाता है, क्रोध आता है। तो अगर हम नफरत करना छोड़ दें समाज से तो क्रोध क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे श्री विश्वनाथ ठाकुर प्रभुपाद जी समझा रहे। हम इस दुनिया में बहुत कम समय के लिए आए हैं, ये जान जितने लोग सब बैठे हैं, हमारा जीवन बहुत ही क्षण भंगुर है। किस तरह से हमारे विश्वनाथ करते हैं कि जीवन कमल दर्द, कमल के पत्ते पर ठठलाती जल की बूंद की तरह हमारा क्या है, जीवन है। अब मरेंगे तब मरेंगे कुछ पता नहीं है। इसे जितने समय के लिए हम हैं यहाँ पे प्रेम से रहना सीखें, नफरत और ईर्ष्या से दूर। अगर आप जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो प्रेम से जीना सीखिए, और हर जीव के प्रति प्रेम भावना होनी चाहिए। ऐसा तभी होगा जबकि आपका मन किससे लगेगा, कृष्ण से। अगर आपका प्रेम भगवान से नहीं है, भगवान के प्रति नहीं है, भगवान के नाम के प्रति नहीं है, तो जान लीजिए फिर आपका प्रेम जो है किसी के साथ नहीं होगा, क्योंकि भगवान से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण और कीमती नहीं है। क्योंकि आपका जो जीवन है उसकी डोरी किसके हाथ में है, कृष्ण के हाथ में। अगर आपके हृदय में उन्हीं के प्रति प्रेम नहीं है तो आप दुनिया से क्या प्रेम करेंगे। यही कारण है कि 99% लोग जो कि कृष्ण से दूर हैं, तो इसलिए उन्हें ठीक से जी रहे हैं और न जीवों को जीने दे रहे हैं। मछली खा रहे हैं, कबूतर खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, बकरी का जो चीज पाए उसी को खा रहे हैं। मार क्यों, उनका प्रेम जीवों के प्रति नहीं है। जानते हैं ऐसी ऐसी कंट्री है जहां इंसान का भी मांस खाया जाता है, पता है। गाय बेचारी बहुत दूर की बात है, इंसान खाते हैं, मंकी बेचारे। ये दुनिया बड़ा विचित्र है, लोग अपनी जीवा की पूर्ति के लिए किसी को बख्श नहीं है। इसे संकल्प लेना चाहिए कि हमें
अपनी जीवा पर कंट्रोल करना चाहिए, वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए, क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए। इस सब से तभी संसार के लोग क्या रह सकते हैं, सुखी रहते हैं। आजकल लोग इतने निगेटिविटी होते हैं, इतने सब नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। कोई थोड़ा सा प्रगत करता है घृणा ईर्ष्या उत्पन्न होती है। अगर उसके पास एक गाड़ी आ गई तो हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं है, उसी के पास क्यों है, राइट। बाहर दुनिया क्या यही हो रहा है, उसने एक मकान बना लिया तो हम कैसे पीछे रह गए। ईर्ष्या, ईर्ष्या कई रूप से आती है, कई कारणों से आती है। तो हमें नफरत ईर्ष्या पर विजय प्राप्त, ईर्ष्या अगर नहीं करेंगे तो क्रोध पर विजय प्राप्त। इसी प्रकार वह धन संचय करने की इच्छा को त्याग सकता है, मात्र यदि वह इतना ही सोच ले कि अपने पास आए धन की रक्षा करना कितना कठिन है। यदि किसी के पास प्रचुर नगद धन रहता है तो उसे ठीक से संभालने के विषय में चिंतित रहता है। इस तरह कोई धन संचय के अवगुण को विवेचना करे तो स्वभावतः बिना कठिनाई के अपना व्यवसाय छोड़ सकता है। धन कमाइए लेकिन उतना ही कमाइए जितना जायज, उसको सही तरीके से अपने जीवन में लगा सके। शास्त्र कहता है कि अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो बिना पूछे 50 रुपए आपको मंदिर में आकर के दे देना चाहिए। कोई देता है? अरे 1 रुपए देने में तो 10 बार देखता है, सोचता है 10 बार देने में तो सोचता है। अपनी कमाई का 50% किसको देना चाहिए, ठाकुर जी की में इस साल से करता है। अगर आप 1000 रुपए कमाते हो तो 500 की नोट किसमें डालिए, ठाकुर जी के पास चुन दिए। ऐसा इंसान नहीं करता, भागवतम बताया गया। अगर आप 1% भी लोग दें कितने मंदिर बन सकते हैं, लोगों के पास कितना पैसा है आप जान सकते। लेकिन लोग भगवान के चरणों में अर्पित नहीं करना चाहते, है ना। लोगों का कितना पैसा है, अभी देखिए ना, एक इंजीनियर पकड़ा गया, जानते उसके घर से कितना पकड़ा गया, 20 करोड़ रुपए कैश घर में, 20 करोड़ रुपए। एक 20 करोड़ अगर इस काम को दे देता 4 मंदिर में खड़ा कर देते घर से, कितने लोगों का भला होता। लोग दबा के बैठे हैं, अब क्या पुलिस वाले ले जाएंगे, असल नेता लोग मुस्लिम के पैसा खा जाएंगे। तो धन संचय करिए, लेकिन धन का कैसे उपयोग किया जाए एक न जाए। हमें अच्छी तरह याद है जब हम पंजाबी गांव में प्रेसिडेंट थे, बहुत पहले की बात है, हमारे एक भक्त हैं वो किसी को मेंबर बनाने गए थे पंजाबी वादिष्ट में। वो व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, उसने इंस्टॉलमेंट में जब मेंबर बना, वो आके बताए कि इंस्टॉलमेंट में मेंबर बना दिया। बहुत अच्छा, 2 महीने के बाद उसी व्यक्ति जिसने इंस्टॉलमेंट पैसा दिया था मंदिर को, उसके यहां इनकम टैक्स रेट डाली थी 5 करोड़ रुपए कैश मिला था। मैं तो 5 करोड़ रुपए कैश लेकर के रखे हुए हो, है ना, अब मंदिर को दे रहे कितना इंस्टॉलमेंट में, शर्म आनी चाहिए। लोग भगवान से डर ही नहीं है और अपना मुंह लेकर के खड़े हो जाए भगवान सामने। प्रभुपाद जी कहते हैं देखिए, जो व्यक्ति गलती करता है वो अपने माता पिता के सामने आने में डरता है, राइट। जैसे कोई बच्चा, बच्चे से की गलती हो गई, अपने मम्मी पापा के सामने आने का संकोच करता है। लेकिन हम लोग ऐसे बिठ रहे हैं कि हमारे परम पिता कौन है, भगवान, हम गलतियां पर गलती खा रहे हैं और फिर भी उनके सामने अपना मुंह लेकर खड़े हो जाते हैं, सारा मानना चाहिए। तो लोगों को भगवान से कोई डर नहीं है। आप जानते हैं वृंदावन में आप जाइए, सत्यनारायण स्वामी की इतनी भीड़ होती है कि भक्तों के लिए चलने की जगह नहीं होती, क्योंकि जैसे छुट्टी मिलती है अपने दिल्ली वाले जितने बड़े बड़े स्टेट लोग हैं सब लोग गाड़ी लेकर चले जाते हैं, 2 घंटे पहुंच जाएंगे आप वहां, राधे 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 मार परिक्रमा करेंगे और वहां आकर के फिर अपने काम में लग जाएंगे जो उनका काम है। परिवर्तन नहीं हो रहा है, सुधरना कोई नहीं चाहता, सब लोग जिंदगी खेती करना चाहते हैं। सुधरना कोई नहीं चाहता, इंद्रियों को कोई कंट्रोल नहीं करना चाहता। यही काम है
कि भीड़ तो हर जगह दिखती है लेकिन सुधार नहीं दिखता, क्योंकि कोई सुधरना नहीं चाहता। इसीलिए ऐसे लोगों को लोग शिष्य बनना चाहते हैं, ऐसा गुरु बनाना चाहते हैं जो नहीं कहता, जो कहता है जो कुछ खाना पीना खाओ पियो है ना, बस हमें अपना गुरु मान लो, बस तुम्हें जो करना करो। वो पानी छिड़क देते हैं, जिनको पानी पीने पड़ोगे शिष्य बन गया है, ऐसे चलता है। जिसको चाय पीना चाय पियो, मांस खाना मांस खाओ, जो करना करो बस हमें गुरु मान लो, ऐसे चलता है। प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो प्रभुपाद बोला करते थे वहां पर जो पहले से साधु पहुंचे थे, अरे स्वामी जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम वही कहेंगे जो भगवान ये अंतर। इसलिए प्रभुपाद जी ने कभी भी सिद्धांत समझौता नहीं किया। तो धन की उपयोगिता इसी में है, किस तरह से धन को हम भगवान के प्रचार कार्य में और मंदिर निर्माण कार्य में लगाएं, बैलेंस करें, क्योंकि ज्यादा लोभ करने से कोई फायदा नहीं। आप जानते लोग क्या करते हैं, आजकल यही स्थिति हो गई है, हम तो साउथ दिल्ली में रहते हैं, वहां पे आप विश्वास के एक एक मकान कितना कीमत है, तो पंजाबी बाग में बहुत महंगा हो गया है, जानते हैं करोड़ों रुपए के मकान है, रहता कौन है, कुत्ता रहता है, नौकर रहते हैं, क्योंकि इंसान को रहने के समय आप क्या कर सकते हैं। परिवार में चार लोग हैं, चारों लोग बिजी हैं, भागत भाग मचाए हुए, एक साथ बेड में खाने के समय है, पीने के समय है, समय नहीं। और जिस घर तुम बनाए उसे रहने के समय हर दिन तो बेचारा कुत्ता भाग खा ले। हमारे लाइफ बीमा है, इस शाम को सब उनको जानते हैं, कई बार वो क्या बोले कि मेरे जो डागी है, क्या डागी डागी होते हैं, डागी ना उसको एयर कंडीशन हॉस्पिटल पसंद है, एयर कंडीशन डॉक्टर, एयर कंडीशन नहीं लेना पसंद करता है। तारीफ कुत्ते की तारीफ करेंगे, कुत्ते से अंग्रेजी बोलेंगे, वास्तव में कुत्ते को अंग्रेजी बोल नहीं आता है नहीं, आज कुत्ते की अंग्रेजी आते हैं क्योंकि तमिल से फ्रेंड और उसको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे हमारे आप लोग ध्यान समझ एक सर्कस है, अपोलो सर्कस के नाम सुना नहीं, अपोलो सर्कस बहुत फेमस सर्कस इंडिया का, उसके जो मालिक थे मर गए है नहीं, मिस्टर सहदेवन, हमारे प्रभुपाद जी बड़े फॉलोअर, इस काम की मदद करने में उनका भी हाथ था। मैं जब बंबई में था तब मुझे उनसे मिलने का सुझाव मिला था, उनके दो बच्चे हैं, बड़ा बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है अमेरिका में, छोटा वाला अपोलो सर्कस लगाता है ना। तो मुझे याद है कि वो बंबई में थे तो दादर का जो बहुत बड़ा हाल वहां पर अपोलो सर्कस लगाता, तो पहला शो स्टार्टिंग में हम देवकी ने भक्तों के लिए गया कि शो का पहला शो आप भक्त करें, उसका उद्घाटन करें। तो हम लोग गए, जब गए वहां छोटे छोटे जोकर नहीं होते, छोटे छोटे साइज के, तो हरे कृष्णा पूरा खता खतरा होता है। हमको कितनी अच्छी बात है कि हमको देख करके वो सेंटर से हरे कृष्णा हो गए, सब अंदर किसी जा रहे हैं हमारे के हरे कृष्णा वाले आ गए, इतना बड़ा प्रचार हुआ। वहां पर गए, वहां पर एक सीन चल रहा था, जो सहदेवन साहब का बेटा है ना छोटा वाला, तो हमारे हम लोग साथ ही बैठे थे, तो उसमें एक सीन था जिसमें गिनती लिखी रही थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे सर्किल में है ना, बड़े अक्षर में लिखा रहता है। तो जो एक हाथी आता है, एक हाथी लेकर के आता है और उसके साथ एक उसका हंटर लेकर कंट्रोलर होता है ना, तो पब्लिक से पूछा कि आप कौन सा नंबर बुलाना चाहते हैं हाथी से, कि जो नंबर आप बोले पब्लिक बोलेगी वही नंबर हाथी जो है उठाएगी। हाथी इतनी पढ़ी लिखी है, देख मूर्ख बनाने का तरीका पता है ना, तो पब्लिक की सुना कि 8 नंबर, और उसने कहा अब हाथी को जो है वो सारे नंबरों से ऐसे जो है घुमाया, एक बार घुमाया, दो बार घुमाया, 3 बार, धीरे धीरे जैसे हाथी पढ़ रही है। ये तो गलत है। फिर जब तीसरी बार हुआ, एक बार घुमा दिया, दो बार घुमा दिया, अब पब्लिक जो पड़े खुद को हाथी पढ़ रही है, हाथी कितना इंटेलिजेंट पढ़ती है। तो जैसे ही 8 नंबर के पास आया तो उसने कहा कर हाथी ने, वो 8 नंबर जब पब्लिक ने बोला तो उठा दिया, सब बड़े तंग जाए, देखो हाथी ने आठ कितनी समझदार, कोई समझदार नहीं, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। जब ट्रेनर, क्योंकि जो ट्रेनर है वही जानवर सिखाता है, जैसे शेर, कभी कभी शेर देखा पुरुष करते, तो शेर को जो ट्रेनर है उसको वही लेके चलेगा, कहीं वो क्या कर दिखा सकता है कि उसने ट्रेन किया है। तो इसके पीछे क्या रूल था आप जाने की बता दो, इसके पीछे रूल था कि उसने ट्रेनर, तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया था। तो हुआ क्या कि दो बार तो हाथी के साथ साथ हाथी का कान पकड़ करके, है ना, हाथी का कान पकड़ करके ऐसे उसके साथ साथ घूमे। जब उठाने का समय आया तो 7 नंबर तक तो हाथी का कान पकड़ के साथ साथ कर रहा था, जैसे 8वां नंबर आया तो उसने हाथी का कान छोड़ करके और दो फुट पीछे चला गया। हाथी समझ गए हमें इसी को उठा दिया, सुन कि 8 नंबर उठाना है, तो एक इशारा है, आप सारा काम क्या ट्रेनिंग इशारा, इसको मार बोल ट्रेन लेते हैं किसको, नहीं इसको पकड़ना, जब हम ऐसा करेंगे इसको पकड़ना, ऐसे हम कुत्तों से रख करते हैं, कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती, ट्रेन बच्चे ट्रेन करती, उनको अंग्रेजी अंग्रेजी नहीं आती। लोग क्या सोचते हैं देखो हमारा कुत्ता कितना अंग्रेजी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ट्रेनिंग होती है। तो दुनिया में प्रभुपाद बताते थे कि धोखा देने वाले भी हैं और धोखा खाने वाले भी हैं, हमको बुद्धिमान होना चाहिए, हमें कोई धोखा न दे सके। इसलिए नारद जी शिक्षा देते हैं कि हर विषय से हम अपने आप को बचा सकते हैं, तो अगर हम क्रोध से बचना चाहें तो ईर्ष्या को त्याग दें, अधर्म संग्रह के दोष को लोभ से बचना चाहें, धर्म संग्रह करने का जो दोष है उससे बचें, है ना, और सत्य की विवेचना करके भय से बचें। हम भय से बच सकते हैं तो सकते हैं, कोई ये पता चल जाए कि हम आत्मा हैं शरीर नहीं है, तो ये जो दिव्य ज्ञान जो आत्मा का ज्ञान है अगर हमको मिल जाता है तो हम भय से भी क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? और सारी बातें रहती है, याद रहती है, इसलिए ये जो सर्कस है। एक बार यहां भी ऐसे हुआ था, जब यहाँ पंजाबी वाले थे तो चांदनी लाल किला के पास अपोलो सर्कस लगा हुआ था, तो हमारे राजकाल जी मंदिर सिटी रोड में सिटी थी, तो मैंने जैसे बोर्ड देखा तो मैं तो जानता था, हम तुरंत गए कैंप में और कहा कि सहदेवन जी कहाँ है, उनसे मिले, जानते क्या क्या हुए, उन्होंने 51 रुपये डोनेशन दिया और कहा कि राजकाल मंदिर में हमारी तरफ से फीस्ट होना चाहिए। देखो प्रभुपाद ने कैसे कैसे लोगों को प्रचार किया, तो सर्कस दिखाना क्या है कि रोजी रोटी है उनकी। जितने भी जानवर होते हैं ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इनको ट्रेनिंग देते ये जानवर। हरे कृष्ण। गंधराज सिंहावतम की जगत गुरु शिल्प महाराज।